क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा सादर नमन। क्षितिज कार्यक्रम लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, क्षितिज कार्यक्रम हिंदी सचिवालय की प्रस्तुति में प्रस्तुत किया जाता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षितिज कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य रहता है देश विदेश से आए हुए हमारे मेहमान जो हिंदी से जुड़े होते हैं, भाषा से जुड़े होते हैं, संस्कृति से जुड़े होते हैं, उन्हें हम आप से रूबरू कराते हैं। और आज जैसा कि आप जानते ही हैं, क्षितिज कार्यक्रम में हमेशा हिंदी सचिवालय समय समय पर अपनी गतिविधियों को आयोजित करता रहता है, और ऐसे में दो दिवसीय आईपी हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हिंदी सचिवालय द्वारा लगाया गया, उसमें हमारे देश विदेश से हिंदी से जुड़े हुए प्रेमी जो हैं वो मॉरिशस में आए। आज उनमें से एक जो सुनीति मिश्रा जी हैं, मेलबर्न से यहाँ आई हुई हैं, और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम उनसे सुने कि कैसे वो मॉरिशस में आई, किस उद्देश्य से आई, और कैसे वो हिंदी से जुड़ी हुई हैं।
हाँ, मैं मेलबर्न से विश्व हिंदी सचिवालय में हिंदी साहित्य सम्मेलन में भाग लेने आई हूँ, और मुझे लास्ट ईयर मेरी बहन एक्चुअली आई थी यहाँ पर, तो उसी ने मुझे बताया, और बहुत सारे यहाँ के कहानी किस्से बताए कि कैसे कैसे वो यहाँ पर घूमी, यहाँ की ब्यूटी के बारे में बताया, कितनी खूबसूरती है यहाँ के समुद्र, और उसने बताया कि यहाँ वैसे तो मेलबर्न में बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन यहाँ का सी कहती है अमेजिंग है। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर भी देखते हैं, और क्योंकि मेरी बहन जो है वो साहित्यिक कहानियों से जुड़ी है, उसकी भी बहुत सारी किताबें भी, लास्ट ईयर भी एक विमोचन हुआ था एक कहानी की किताब का, और इस
और कल भी हुआ, मैंने जैसे सुना कल उनकी एक किताब को सम्मान दिया गया, मैं वहीं थी,
आप तो वहाँ थी, गंगाबाई
जी उनकी किताब जो है गंगाबाई,
हाँ यह प्रीति मिश्रा की गंगाबाई कहानी, उनकी किताब को विमोचन हुआ।
शारदा मित्तल जी जो हैं वो ऑर्गेनाइजर हैं
जी, प्रीति मिश्रा और शारदा मित्तल ही, उन्होंने सारे
आईपी की ऑर्गेनाइजर हैं। हाँ,
आईपी फाउंडेशन जो है वो है स्मिता मिश्रा।
अच्छा,
हाँ जी,
अच्छा हुआ आप क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे हाँ, तो मैं बहुत से लोगों से मिली, लेकिन हाँ, मुझे पता नहीं है कि आईपी के हाँ, कौन इंचार्ज हैं और कौन चलाती हैं। हाँ, तो स्मिता
जी, वो स्मिता मिश्रा हैं, और प्रीति मिश्रा और ये शारदा मित्तल जो हैं, शारदा मित्तल दोहा क्वीन कहलाती हैं।
हाँ, मैंने कल उनके दोहे
सुने,
बहुत
प्यारा वो बोलती हैं, मैंने तो उन लोगों के टीवी में प्रोग्राम भी देखे हैं। अच्छा। और काफी कवि सम्मेलन होते रहते हैं,
तो उनमें वो लोग
बहुत मतलब
जुड़ी
हुई हैं ये लोग, तो और उसकी वजह से मैं भी उन लोगों को फॉलो करने लगी। और
अच्छा हुआ आप यहाँ पर आई, आपने इस सम्मेलन में भाग लिया, हिंदी से आपने क्या जाना, आप मेलबर्न में रहती हैं और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप आईपी के इस सम्मेलन में जुड़े हैं, और हिंदी का इतना दो दिवसीय जो सम्मेलन लग रहा है उसमें आप जुड़ी हैं, और कल पहला सत्र लगा, पहला सेशन हुआ, उसमें आपने क्या पाया?
एक तो मैंने यहाँ पर, मैं तो ज़्यादा मतलब पहले तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ आ रहे थे, किसी कारणवश कुछ लोग नहीं आ सके, तो मुझे लग रहा था मैं अकेले पड़ जाऊँगी, कैसे घूमेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर तो ज़्यादातर स्टेज पर रहेगी क्योंकि वो संचालन कर रही थी। तो लेकिन काफ़ी नए नए दोस्त बनाए, और जिनके बारे में वो मुझे बताती थी, जैसे एक बहुत महान कलाकार हैं राजेश्वर वशिष्ठ, लेखक हैं, उन्होंने राम सीता के बारे में, उनकी बहुत 52 किताबें उनकी लिखी हुई हैं। जिसके ऊपर शोध भी चल रहा है। तो उनसे मिलने का मौका मिला, और एक मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी पांडे हरियाणा में प्रोफेसर हैं संस्कृत की। तो जब हम लोग कल गंगा तालाब जब गए, तो वहाँ पर बहुत सारे भगवान जी अलग अलग मूर्तियाँ थी, तो वहाँ पर उन्होंने एकदम से वहाँ पर पूजा चल रही थी, तो दिया तैयार था पूजा का, और हाथ में हमने ले लिया, और उन्होंने अपना संस्कृत में जो श्लोक पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ के पंडित जी जो और भी एक
लेडी,
वो हैरान रह गए, इतना अच्छा भी कोई उच्चारण कर सकता है, तो मुझे तो पता नहीं था, और जब पता चला ये तो बहुत ही महान है, ऐसे महान महान लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। एक और नई एक लड़की थी, डॉक्टर शिखा गुप्ता, वो आर्ट में मतलब थेरेपी में वो करती हैं, आर्ट से थेरेपी कैसे करती हैं, वो भी कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं हरियाणा में, तो उनसे काफ़ी मेरी दोस्ती हो गई है। तो ऐसे और भी कई सारे लोग हैं, अभी मुझे सबके नाम इतने याद नहीं आ रहे हैं।
अच्छा मुझे बताएं सुनीति जी, आज भी दूसरा सेशन है उसमें भी आप भाग लेंगी, ये बताएं कि आप मेलबर्न से आई हैं और वैसे मूल रूप से आप भारत से हैं
जी,
कितने सालों से आप मेलबर्न में रह रही हैं?
30 साल हो गए हमें,
30 साल
हो गए जी।
अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में ये माहौल जो है आपको मिला, आपकी बहन, आपके परिवार में अन्य लोग भी हैं जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं,
क्योंकि हमारे बचपन में मेरे पापा वैसे तो इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर पापा थे, अभी पिछले साल नहीं रहे वो, और मम्मी भी हमारी शिक्षिका, उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, और मम्मी शुरू से स्कूल में, हम लोग सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो मम्मी जब वो काफ़ी प्रोग्राम्स कराती थी, ड्रामे, डिबेट, और मेरी सिस्टर तो मतलब बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत अच्छा शुरू से ही उसको
शायद हिंदी में रुचि,
हाँ हिंदी में रुचि थी, तो मम्मी लेखिक, मम्मी लिखती थी ड्रामे, कहानी सब कुछ वो लिखती थी, पूरा ड्रामा,
मतलब एक लेखिका थी,
लेखिका थी मम्मी, और पापा दोनों मिलके लिखते थे, तो वहीं से धीरे धीरे मैं तो ज़्यादा नृत्य और उसमें रहती थी, और मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, तो मैं मेलबर्न में भी आर्ट सिखाती हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ मैं यहाँ से काफ़ी।
मूल रूप से आप भारतीय होने के नाते मेलबर्न में बसी, तो वहाँ पर हिंदी के लिए क्या कर रही हैं, या फिर इस सम्मेलन से आप क्या लेकर जा रही हैं कि हिंदी के लिए क्या कर सकती
हैं? एक तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे इंडिया से जो लोग भी आते हैं वो जाके सोचते हैं वो हम पूरे अब अंग्रेजों की चीज़ें अपना लें,
क्योंकि भारतीय संस्कृति की पहचान तो आज विश्व भर में है
ना, तो वो घर में हिंदी में बात नहीं करते, तो हमने एक रूल बनाया कि घर में हिंदी में ही बात करनी है,
ये बहुत
बच्चा इंग्लिश तो सीख ही जाएगा स्कूल जाके,
बिल्कुल।
तो हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड जब भी रात होती थी तो हम लोग साथ में ही खाने के, एक था कि सारे लोग साथ में ही खाएंगे, टेबल पे सब लोग साथ में होंगे, फिर सोने से पहले मेरे पति हमेशा एक कहानी कुछ भी सुनाते थे, तो उससे उनको एक तो ये भी पता चलता था हमारे रामायण में क्या चल रहा है, महाभारत में क्या, सबके नाम पता चले, छोटी छोटी कहानियाँ ऐसे करके, और ऐसे वो सो जाते थे। और गायत्री मंत्र बच्चों को जब वो बोलना सीखा, 2 साल की लड़की थी, गायत्री मंत्र बोलती थी हमारी,
तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं समझती हूँ कि जो आपने पहले बात कही कि बहुत से लोग जब भारत से बाहर जाते हैं तो वो तुरंत अपनी भाषा त्याग देते हैं,
हाँ
छोड़ देते हैं,
वो नहीं करना चाहिए,
क्योंकि देखो अपनी जड़ों से हमें नहीं
नहीं हटना चाहिए।
और आप जब आज जब हम जानते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु की और दिशाएं पकड़ रहा है, तो ऐसे में सबसे पहली बात होनी चाहिए कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति जो है, हाँ, उसे ना भूलें,
बिल्कुल नहीं,
और इसके लिए हमें काम करना होगा। जैसे आप मेलबर्न में हैं, आपने परिवार में कर रही हैं, और उस के बावजूद आप यहाँ पर हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आई हैं, जो 2 दिन का दिवसीय सम्मेलन जो आईपी की तरफ से लगा है उसमें आई हैं। अच्छा, यहाँ आकर आपने क्या अनुभव किया?
यहाँ पर हम लोग एनिलिया रिसोर्ट में रुके हुए हैं, एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कोई फंक्शन चल रहा है।
अच्छा,
है ना,
हाँ, क्योंकि बहुत से लोग आए हैं, सबसे लोगों के
करीब 80-85 लोग आए हुए हैं जगह जगह से ना, और जिससे भी मिल रही हूँ भाई तुम, क्योंकि मेरी सिस्टर तो अपना अलग दुनिया
उनका
क्योंकि कल क्या प्रोग्राम होना है वो लिख रही है, सब कर रही है उसमें बिजी, तो मेरा उसके संग रहना कम हो रहा है। एक लालच था कि उसके संग भी रहने को मिल जाएगा, बट वो कम रह पाए क्योंकि
हम, स्वाभाविक है, वो प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं।
तो एक सविता चड्ढा जी हैं, डॉक्टर सविता चड्ढा, उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनकी किताबों पे भी शोध चल रहा है।
अच्छा,
हाँ, तो मैं उनके साथ रुकी हुई हूँ।
अच्छा,
और वो भी अपने बारे में जब बताती हैं तो मुझे लगता है अरे हम तो कितनी महान हस्तियों से मिलने का मौका मिला, तो मुझे एक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, और रोज वहाँ पर इंडिया का बिल्कुल अच्छा वाला खाना मिल रहा है।
अच्छा,
तो सभी लोग काफ़ी खुश हैं, इंतज़ाम बहुत अच्छा है, और जहाँ जहाँ हम लोग घूमने गए, पैरासीलिंग की, सी वॉकिंग करा, वो मैंने मेरा पहला फर्स्ट टाइम
अनुभव
था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत ही फ्रेंडली, जैसे लगता नहीं था कि इनको हिंदी नहीं आती, जिससे भी चाहे इंग्लिश भी बोल लो और अगर कभी अचानक से हिंदी में बोलने लगो वो हिंदी में भी रिप्लाई देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें ये सब यहाँ पर। और ब्यूटी तो है ही है।
अच्छा, नेचुरल मैं beauty. अगर कहूँ कि आप दो दिवसीय ये आईपी सम्मेलन लगा और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, अगर मॉरिशस से आप वापस लौट कर जा रही हैं और इतने सारे हिंदी प्रेमियों, इतने अनुभवी लोगों से मिली हैं, तो आप क्या प्रण लेती हैं कि आप वापस जाकर मेलबर्न में क्या कर सकती हैं हिंदी के लिए?
मैं तो अभी भी बहुत कुछ करती हूँ, तो इसी में कुछ मैं भी शायद ऐसे कभी सोचूंगी कि हम भी कुछ दूसरी कंट्री में लोगों को इकट्ठा करके लेके जाएं। जैसे बहुत सारी अभी पता चला कि हम लोग कह रहे थे चलो बाली चलते हैं या श्रीलंका चलते हैं, तो श्रीलंका में पता चला वहां पर इतना हिंदी का नहीं है,
नहीं बोल पाला,
लेकिन इंडियंस तो बहुत है वहां पर। तो
मैं देखूंगी, हमारे लिए मॉरिशस के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और भारत से भी या कहीं भी देशों से बाहर से लोग आते हैं जब वो देखते हैं मॉरिशस ही एक बिरले देश है भारत से बाहर जहाँ हिंदी का बोलबाला
85% कितने
85% तो हमारे हिंदू हैं ही, लेकिन होने के बावजूद जैसे आपने अभी कहा श्रीलंका में बहुत से हिंदू हैं लेकिन फिर भी वहाँ हिंदी का कोई बोलबाला नहीं है, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मॉरिशस में हिंदी के लिए जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो बहुत बड़ा एक दिशा हिंदी को दे रहा है।
पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों से वो हिंदी में बात करें, उनको हिंदी स्कूल भेजें, जो कि मैंने भेजा अपने बिटिया को। हाँ,
कई लोग कहते हैं मुश्किल होता है,
नहीं कुछ नहीं होता है, ये तो आपके ऊपर है, बच्चों को कैसे बना दो ना।
बिल्कुल,
मेरी बेटी यहाँ आती है तो आप पहचान नहीं सकती कि वो मेलबर्न से आई है, वो वहीं की बॉर्न एंड ब्रॉटअप है।
अच्छा।
लेकिन बहुत अच्छी हिंदी बोलती है और सभी हिंदी प्रोग्राम में भाग भी लेती है। मेरे घर कोई भी त्यौहार होता है मैं पूरा घर सजाती हूँ अच्छे से, और वहाँ पर भी SBS रेडियो से मेरे घर लोग आए थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग किया, सब टीवी में भी आया मेरे घर का। दिवाली पे एक बार फंक्शन हुआ था, क्योंकि मुझे मेरे कला में काफ़ी रुचि रखती हूँ मैं, तो काफ़ी सजा, और मेरा अपना एक ब्यूटी सैलून भी है मेलबर्न में, तो इस करके काफ़ी, और मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। मैं
आपके पास तो इतनी कलाएं हैं और अब आप इस इतने बड़े अनुभव से जुड़ी हैं जो शायद आपके लिए बिरले था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बीज रोपण ज़रूर हुआ है कि आप चाहेंगे कि मैं भी अपनी कलम चलाऊँ।
हाँ, मैं लिखती, एक्चुअली मैं लिखती थी जब मैं छोटी थी, तो छोटी छोटी कहानियाँ लिखती थी। अब मैं ये सोचती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कभी कभी, क्योंकि आजकल तो लोगों को मीडिया और मतलब फेसबुक पे और
आजकल तो सोशल बहुत
टिकटॉक है ना, इंस्टा पे, तो सब लोग किसी ना किसी जरिए से अपनी कला दिखा सकते हैं।
बिल्कुल सही कह रही हैं।
और मेरे पास, क्योंकि मेरे सैलून में बहुत लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, मैं बहुत मदद भी करती हूँ लोगों की। इंडिया से कितने स्टूडेंट्स आते हैं जिनको आते ही पता नहीं चलता कि अब वो कैसे कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि शुरू में तो बहुत मुश्किल होती है, कहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो रेंट के लिए तो वो पहले आपका बैंक बैलेंस देखते हैं, स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना इनकम दिखाएं। तो क्योंकि मैं तो बहुत 30 साल से हो गया, तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि भाई बच्चों तुम लोग कहाँ पर जाओ, क्योंकि मेरे बहुत कांटेक्ट हैं।
तो चलिए, मेरे को अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आप दो दिवसीय इस सम्मेलन से जुड़ी और आपके प्रति आपके अंदर हिंदी से जुड़ने की, जबकि आप हिंदी से जुड़ी हुई हैं, मूल रूप से आप भारतीय हैं, और आपके घर का जो माहौल है, आपकी मम्मा जो हैं वो शिक्षिका रह चुकी हैं, आपकी बहन इतनी बड़ी साहित्यकारा हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर अपनी कलम अपनी
जल्दी जल्दी
जान देंगी और उस पर कुछ करेंगी। कला की इतनी बातें आपने बताई कि आप खुद कला से जुड़ी हुई हैं, कुकिंग में हैं, और पता नहीं कितनी, क्योंकि देखिए हर इंसान में कला होती है,
बिल्कुल,
लेकिन लिखने की कला जो है वो अपने आप में
एक
अनूठी,
एक दिन शायद हो सकता है आपके सामने मेरी भी किताब का विमोचन हो जाए।
होगा, आपको शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और जिस तरह आपकी बहन लिखती है आप भी लिखेंगी जरूर, हिंदी से जुड़ेंगी, और जिस तरह से आपने प्रेरणा दी, प्रेरणा देती हैं अपने बच्चों को, आगे भी लोगों को यूं ही हिंदी के प्रति प्रेरणा स्रोत उनकी बनती रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। श्रोताओं, हम सुनीति मिश्रा जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे।
धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ इस काबिल समझा, यहाँ बुलाया,
हमें अच्छा
इतने लगा, प्यार से बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
धन्यवाद सुनीति मिश्रा जी। और यहाँ पर श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम का समय यहाँ पूरा हो रहा है, अपने एक और प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार,
थैंक यू।
क्षितिज क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।